मेरे बहुत बहुत नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 मई 2017 है, इस महीने का पहला दिन, और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही दोस्तों स्वागत करता हूं, विशेष रूप से अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शिल्पा रावत, आप कोटा राजस्थान से हैं, लक्ष्मी शर्मा, आप जयपुर राजस्थान से हैं, और लता शर्मा, आप भी जयपुर राजस्थान से हैं। यानी कि हमारे आज के ये 3 नौजवान साथी राजस्थान से हैं। तो शिल्पा, लक्ष्मी और लता, आप 3 मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कुछ मेल आ रहे हैं एक तथ्य को लेकर के, और उस मेल में साफ तौर पर उन स्टूडेंट कि बेचैनी दिखाई मुझे दे रही है जो वो प्री एग्जामिनेशन को लेकर महसूस कर रहे हैं, और काफी कुछ स्वाभाविक भी है। दोस्तों, यहां मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मेरी अब कोशिश होगी कि जब भी मुझे थोड़ा सा अवकाश मिलेगा, देखिए टाइम स्पेन तो यही है, रेंज यही है, इसमें जब भी मुझे थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट चीजें दिखेंगी, वक्त मेरे हाथ में होगा, तो मैं अब प्री एग्जामिनेशन पर आपसे बातें किया करूंगा, जो भी मैं आप अपनी तरफ से आपको गाइड कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैं एक बात के प्रति विशेष रूप से सतर्क करना चाहूंगा जो मुझे मेल से डायरेक्ट पता लगा है। कुछ स्टूडेंट ने मेल इस तरह के लिखे हैं कि सर, अब सिविल सर्विस की परीक्षा जो है ना, ये बिल्कुल पास में आने वाली है, और अब उसी में हम पूरी तरह से लग रहे हैं, जुट रहे हैं, तो आप इतने जो अखबार के क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम उसे न पढ़ें तो क्या बात बन जाएगी, काम चल जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी में अब इतना ज्यादा समय लग रहा है कि इसको पढ़ने के लिए वक्त निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। खैर, रीजन चाहे जो भी हो, सच्चाई जो भी हो दोस्तों, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। तथ्य यह है कि जैसे ही आपका प्री एग्जाम कंप्लीट होगा, आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। यदि आप अभी के अखबार, न्यूज, इन सबको छोड़ देते हैं, क्लिपिंग्स छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब मैं मान करके चलूं कि लगभग 1.5 महीने या 1.75 महीने की चीजों का एक लंबा गैप आ जाएगा, लंबा गैप होगा, कम नहीं है, 1.5 से 1.75 महीना। और सच पूछे तो ये खासकर अगर मैं फरवरी मार्च से लेकर के, और जैसे कि आपका जो मेन है वो अक्टूबर है, अक्टूबर का मतलब है कि हमें मान करके चलें कि अगस्त तक की घटनाओं पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस में पूछे जाएंगे, और उसकी जो सबसे बड़ी जो प्रमुख जो बातें होती हैं जनवरी से लेकर के सितंबर तक की, वो सबसे ज्यादा सिविल सर्विस में पूछी जाती है मेंस में। इसका मतलब है कि आप 1.5-2 महीने के 2 खतरनाक चीज काम कर रहे हैं। पहला तो इसकी न्यूज को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपको गलतफहमी है कि आप उस समय की मैगजीन से दूसरी चीजों से कवर कर लेंगे। दूसरी बात है कि आप डिलीट हो जाएंगे, जो घटनाएं लगातार क्रमशः चल रही हैं, आप उन क्रमशःता जो उसकी कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी आपकी खत्म हो जाएगी। और मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज कितनी भी क्यों न हो, जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो कंटिन्यूटी की ताकत होती है, सततता की ताकत होती है, निरंतरता की ताकत होती है। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एकदम छोड़ दें और बाद में आप कवर कर लें। ये हमारे दिमाग में लगातार निरंतर बूंद बूंद करके रचने बसने वाली चीजें हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप छोड़ देंगे तो ये नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे, और जो रियल कंपटीशन है फ्रेंड्स, वो तो ये मान करके चलिए कि वो मेंस में ही है। अब मैंने जो बातें इसके बारे में हो सकती थी वो बता दिया, निर्णय लेना आपके हाथ में है कि आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे, पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे। तो मित्रों, ये आज के प्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में मेरी थोड़ी सी गाइडलाइंस आप समझ सकते हैं, गाइडेंस समझ सकते हैं। आइए अब मैं न्यूज एनालिसिस पर आता हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी का कल मन की बात जो प्रसारण हुआ है उसे जरूर सुना होगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज आप उसे जरूर सुनिए। उससे भी बहुत पहले जब मन की बात की शुरुआत नहीं हुई थी तब से मैं ये बात कहता आ रहा हूं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर के इस तरह के एड्रेस होते हैं आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति का एड्रेस नहीं है, वो किसी पार्टी के प्रमुख का एड्रेस नहीं है, वो किसी लीडर का एड्रेस नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एड्रेस है, वो एग्जीक्यूटिव हेड है। वो जो भी बात कह रहे हैं राष्ट्र को कह रहे हैं, राष्ट्र से कमिट कर रहे हैं, प्रायोरिटीज निर्धारित कर रहे हैं, अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के लिए भले ही उसकी कोई वक्त न हो या कम वक्त हो, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज्यादा वक्त होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या किया होगा। अब आप जो ने अगर मन की बात सुनी हो तो मैं उसमें से चार तथ्य आपके सामने सिविल सर्विस के लिहाज से रखना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत एड्रेस था, बहुत ही सरल, बहुत ही समझ बोलचाल की, बहुत ही समझ में आने वाली बोलचाल की भाषा में बहुत ही प्यारा एड्रेस मैं कहना चाहूंगा। पहली बात फ्रेंड्स कि उन्होंने अपने एड्रेस में बताया कि इस साल हम रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और उस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। शायद आज की तिथि है डाक टिकट जारी करने की, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। खैर, अब आपको एक रामानुजाचार्य शब्द मिल गया, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारा देश मनाने जा रहा है, उनके सम्मान में उनके स्मृति में श्रद्धावश डाक टिकट निकाला जा रहा है, रामानुजाचार्य। बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखिए, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, स्पेशली जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट, उनके लिए रामानुजाचार्य जी का नाम कोई बहुत अनजाना नाम नहीं होगा। जो फिलॉसफी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बड़ा वेल नोन नेम होगा, बड़ा रेस्पेक्टेड नेम होगा, लेकिन जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा चौंकाने वाला नाम होगा कि यार ये कौन है, रामानुजम तो सुना था लेकिन ये रामानुजाचार्य कौन है। कोई बात नहीं, हमारे जो ज्ञान का क्षेत्र है वो हमारे अध्ययन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमने जो कुछ पढ़ा है वही हमको मालूम है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मित्रों, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए रामानुजाचार्य का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब हम अपने सिविल सर्विस के सिलेबस से मैच करते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि जो भक्ति काल है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल मेंस में आप देखिए कि जो भक्ति काल, जो मेडिवल पीरियड रहा है आर्ट लिटरेचर कल्चर के अंतर्गत, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और रामानुजाचार्य उसके सूत्रधार हैं, उसके उद्गम हैं, उसके स्रोत हैं। तो कोई ताज्जुब नहीं कि इस साल जो अक्टूबर में मेंस होने जा रहे हैं रामानुजाचार्य पर ही पूछ लिया जाए, कोई ताज्जुब नहीं है। तो ये आपको मन की बात सुनने से पता लगेगा। दूसरी जो उन्होंने बात कही है फ्रेंड्स, वो है दक्षिण एशिया उपग्रह जो छोड़ा जाना है, 5 मई को उपग्रह छोड़ा जाना है। और आपको ध्यान होगा कि हम इससे पहले भी मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, और खासकर काठमांडू में जो सार्क सम्मेलन हुआ था, न्यूज में ये बात बताई भी गई है, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था कि वो एक साउथ एशिया सैटेलाइट छोड़ेगा जिसमें दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, सच पूछे तो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत इतनी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो अपना उपग्रह तैयार कर सके और छोड़ सके, उनके लिए भारत उपग्रह छोड़ेगा। ये इसे उस समय नाम दिया गया था, मैंने उसका यूज भी किया था, सैटेलाइट डिप्लोमेसी। और जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आप देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो छोटे राष्ट्र हैं, भारत एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर आ गए। पहले तो हम लुक ईस्ट की पॉलिसी पर थे, अब एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर आ गए हैं। और एक्ट ईस्ट ही नहीं है बल्कि जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, और प्रगाढ़ बनाने का एक बड़ा तरीका यही हो सकता है क्योंकि भारत उनमें सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी आबादी सबसे बड़ी है, प्राचीनतम देशों में ये है एक है। इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के बड़े प्राचीनतम सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़े भाई के नाते मदद का भी हाथ उसे बढ़ाना पड़ेगा, और भारत ऐसा कर भी रहा है। आप देखेंगे कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ ये किया, बांग्लादेश के साथ ये किया, अनुदान दिया, ये डोनेट किया, इस तरह की खबरें आपको पढ़ने को मिलती होंगी। उसी के तहत आप इस साउथ एशिया सैटेलाइट को ले सकते हैं। मित्रों, इसको लेकर के मैं एक छोटी सी क्लिपिंग्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे देख लेंगे, उसमें आपको डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी कि इससे क्या क्या उनको फायदा हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज की मैपिंग कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन में भी इसका उपयोग हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, और अच्छी जो आईटी कनेक्टिविटी है उसमें इसका उपयोग हो सकता है। और उसमें 12 क्यू बैंड ट्रांसपोर्टर्स हैं और हर देश को एक एक ट्रांसपोर्ट तो मिनिमम मिलेगा ही। इसमें जो देश है नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हैं। और आपने न्यूज में भी सुना कि पाकिस्तान अभी इसमें शामिल नहीं है, अफगानिस्तान इसमें अब बाद में शायद शामिल हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तीसरी जो बात है दोस्तों, वो है सबका साथ सबका विकास को डिफाइन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने, मतलब हो सकता है इससे पहले कभी बोला हो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम है कि अभी तक हम सबका साथ सबका विकास को हम अपने भारत के संदर्भ में ही लेकर के चलते थे, चाहे कोई किसी धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, उन सबको साथ लेकर के और सबके विकास के लिए काम करना है। कल उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है और उसमें कहा कि नहीं, इसमें बाहर पूरी दुनिया शामिल है, हम दूसरी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ, उनको भी साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि सबका विकास, सबके विकास में ही हमारा अपना विकास है। और उसी के तहत फिर उन्होंने साउथ एशिया सैटेलाइट की चर्चा भी की। तो ये एक डेफिनेशन है जो अब आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, हो सकता है आपके दिमाग में दर्ज हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सबका साथ सबका विकास को मित्रों स्वीकार करता हूं इस बात को कि मेरे दिमाग में सिर्फ भारत ही था कि अलग अलग क्षेत्र, धर्म, जाति के जो लोग हैं उन सबको साथ लेकर चलना है। ये कल के मन की बात से आपको पता लगा होगा। चौथी और आखिरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वो है फ्रेंड्स वीआईपी कल्चर को लेकर, कि उन्होंने काफी बातें की और आपको मालूम है कि आज से लाल बत्ती खत्म हो गई है। उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, और आपको ध्यान होगा कि जिस दिन कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि बेसिकली जो वीआईपी एक लाइट नहीं है, ये जो लाल बत्ती है एक लाइट नहीं है, एक सिंबल नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का मनोविज्ञान है, अपने को विशिष्ट समझने का मनोविज्ञान। और उससे भी घटिया बात यह है कि दूसरों को हीन समझने का मनोविज्ञान, कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही सच पूछे तो एक दर्दनाक सच पूछे तो बात थी मित्रों, और वो खत्म हो गई। तो उन्होंने फिर से देखे वीआईपी संस्कृत की जगह अब ईपीआई कहा है, वीआईपी की जगह ईआईपी कहा है, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट पर्सन। प्रत्येक, अगर वीआईपी शब्द ही इस्तेमाल करना है तो उसमें कुछ ही लोग नहीं है, सभी लोग वीआईपी है, एक अच्छा नया शब्द भी उन्होंने दिया है। और मैंने आपसे कहा है कि जो वीआईपी कल्चर की जो बात है, इस बात पर आप हमेशा निगाह रखिएगा, और कहीं भी आपको कोई नई चीज मिल जाती है, नया वाक्य मिल जाता है, नए तथ्य मिल जाते हैं तो प्लीज उसे नोट कर लीजिए, आपके पास अच्छे सारे तथ्य इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपको लिखने में मजा आएगा, और वही सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है। तो मित्रों ये मन की बात के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। मैं दो तथ्य आपके ध्यान में और लाना चाहूंगा न्यूज से ही। पहला, रियल एस्टेट कानून आपको पता है आज से लागू हो गया है, हालांकि एक्ट पहले पारित हो चुका था लेकिन आज से वो लागू हो चुका है। जो रियल एस्टेट कानून है फ्रेंड्स, जब हम खासकर काले धन की समाप्ति की बात करते हैं तो उस क्षेत्र, उस काले धन को रोकने की दिशा में उठाया गया बहुत ही स्ट्रांग कदम है, बहुत ही मजबूत कदम है, क्योंकि माना जाता है कि जो काला धन सबसे ज्यादा जो अभी मौजूद है, जो जिन क्षेत्र में जो जनरेट होता है, मौजूद भी है और उत्पन्न भी होता है, पैदा भी होता है, वो रियल एस्टेट का क्षेत्र है ना, मकान, जमीन, जायदाद, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होता है, उसके रेट इतने बेतहाशा बढ़ गए हैं ब्लैक मनी के कारण कि सच पूछिए वो एक अव्यवहारिक सा हो गया है। मतलब आप छोटी छोटी दुकानों में शहर के बीच में चले जाइए, उनकी किराया पूछिए तो दुनिया भर के किराए हैं। अब जो किराए पर दुकान लेकर के जो अपनी दुकान खोले हुए है, अब बट नेचुरल है कि अगर किराया अधिक है तो वहीं से वो पैसा निकालेगा, अब वो कहां से, तो आपकी चीज दाम बढ़ाएगा। जो आपको चाय 10 रुपए की मिलनी चाहिए थी वो फिर वो 25 रुपए में बेचेगा क्योंकि किराया बहुत ज्यादा दे रहा है। मॉल में जाकर के आप कभी पूछिए, आप लोग मॉल जाते होंगे तो जरा कभी पूछिएगा, अगर कोई बता दे तो आपको, ये जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह वाले उनसे पूछेगा कि भैया इसका किराया कितना है, तो वो जब बताएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप दोबारा पूछेंगे, इसलिए दोबारा पूछेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साल भर का पैकेज बता रहा हो, साल भर का किराया बता रहा हो और मैं उसे महीने भर का समझ रहा हूं। रियल एस्टेट कानून आने के बाद से ये क्षेत्र रेगुलेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि किरायों पर फर्क पड़ेगा, इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, लोगों के साथ जो चीटिंग होती है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर बिल्डर्स ये जो चीटिंग करते हैं, जो बेचारे अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करके थोड़ा थोड़ा और मकान बुक कराते हैं और फिर उनके पीछे पीछे भागते रहते, इन पर नियंत्रण होगा, एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, वो सही हो सकेगा। तो एक बहुत बहुत बड़ा कदम है और सच पूछे तो एक साहसिक कदम भी है, क्योंकि ये जो बिल्डर्स और जो प्रॉपर्टी में जो काम करने वाले लोग हैं दोस्तों, वो धन की दृष्टि से वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। और ये सब जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, जो एक याराना पूंजीवाद है, उसका एक बहुत मजबूत वर्ग है ये, उसके खिलाफ इस तरीके से रियल इस्टेट कानून को लागू कर पाना आसान काम नहीं था। तो कानून तो लागू हो गया, अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कितना होता है, अब ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसके बाद एक आपने और खबर सुनी है फ्रेंड्स, वो है गोद लेने के संबंधी नियम भी आज से लागू हुआ है। आज से काफी चीजें लागू हुई है ना, श्रमिक दिवस भी है गोद लेने संबंधी, कि पहले जो भी व्यक्ति गोद लेने के लिए अप्लाई करता था तो उसके उसको तीन बच्चों के नाम दिए जाते थे, दिखाए जाते थे, उसमें से कोई एक बच्चा वो लेते थे, छांट लेते थे। बड़ा विचित्र सा लगता है कि आप बच्चा छांट रहे हैं। तो अब जो भी आपके आधार हो कि तंदुरुस्त है, गोरा है, ये है, जो भी आपने, अब उसको खत्म कर दिया गया है और ये कर दिया हो गया है कि एक ही बच्चा आपको दिया जाएगा और वही बच्चा आपको अगर गोद लेना है तो लेना होगा। तो मुझे लगता है कि मानवीय दृष्टि से तो ये सही है, बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे काला हो, गोरा हो, पतला हो, दुबला हो, कैसा भी हो, बच्चा तो बच्चा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक जो मानवीयता का जो पुट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आज के न्यूज एनालिसिस को लेकर के आपसे बातें की हैं। मैं चाह रहा था कि मैं रामानुजाचार्य पर आपसे कुछ बातें करूं, लेकिन मैं डेफिनेटली किसी न किसी दिन रामानुजाचार्य जी की जो फिलॉसफी है, जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, इस पर बात करूंगा, ये मेरा आपसे वायदा रहा। अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स, मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स आपको बता देता हूं। तो एक दैनिक भास्कर का है, अब आपको अपने अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक करने की बात चल रही है। जैसे अभी बजट पेश करने का वो बदल दिया गया है, महीना बदल दिया गया है, रेलवे बजट को ओरिजिनल बजट में हमारे शामिल कर दिया गया है, तो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसको लेकर के भास्कर में कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, किसके पक्ष में और इसके विरोध में, तो वो आप देख लीजिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, खासकर जब हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो उसमें संविधान का हमारा एक अनुच्छेद है 142 में यह दिया गया है कि जो हमारा जो हमारी जो जुडिशरी है वो ये देखे कि संपूर्ण न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, और संपूर्ण न्याय को आधार बनाकर अब न्यायालय जो जुडिशरी है वो काफी एक्टिविज्म या ओवर रीच की तरफ चली गई है, उसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या है। और न्यायिक सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह से एक मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि नीति आयोग ने अभी जो 3 साल का एक्शन प्लान दिया है उसके कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, ये मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग के जो एक्शन पॉइंट 3 साल के लिए बनाए हैं उस पर हम लोग कभी चर्चा भी करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं FEIS.com पर वो आपको अवेलेबल भी करा दूं, रीडिंग के लिए अवेलेबल भी करा दूं। दोस्तों एक और आर्टिकल मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी द्वारा लिखा गया है, जनसत्ता का आर्टिकल है। इसमें अभी खासकर जो संसदीय समिति ने हिंदी के लिए जो बातें कही हैं उस पर मैंने इससे पहले आपसे चर्चा की थी, उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ साथ रहने लगे हैं और उनमें कहीं कोई विवाद भी नहीं है, तो ये क्यों बेकार के हिंदी और अंग्रेजी का विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा बड़ा संतुलित लेख है, उसे भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बाद अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इसी में से कुछ मित्रों के नाम मैं ले रहा हूं। 4 मित्र हैं दोस्तों, वो हैं अभिलाष झा जो खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, रविन्द्र कुमार झिंझाना उत्तर प्रदेश से हैं, कलीम अहमद सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, और परमेश दिल्ली से हैं। आप चारों मित्रों का मैं इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपनी एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब एकेडमी के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं और आप सभी ने FEIS.com के बारे में दूसरों को बताया है। मित्र, इसके लिए बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार, और इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा शब्द होगा, अभिनंदन। कुछ और मित्रों के नाम हैं, वो है मोनिका रावत लखनऊ उत्तर प्रदेश से, प्रहलाद सोनी भीलवाड़ा राजस्थान से, बम शंकर झा दरभंगा बिहार से, माधव सिंह गया बिहार से, हरिता तेलंगाना से, दिनेश सिंह बाड़मेर राजस्थान से, कल्याण दत्त बहादुरपुर उत्तर प्रदेश से, ऋषि देव पांडे और सोहन कुमार दरभंगा बिहार से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।